नमस्ते. योग समन्वय द सिंथेसिस ऑफ योगा पार्ट वन भाग एक चैप्टर टेन अध्याय दशम अध्याय. बहुत इंटरेस्टिंग विषय है. वैसे तो सारे सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है. ये विषय है द थ्री मोड्स ऑफ नेचर. प्रकृति कैसे काम करती है. अब अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब एक भारतवर्ष के बड़े प्रोफाउंड डीप ट्रुथ्स जो हैं उनको वेस्टर्न कंटेक्स्ट में चले जाते हैं, वहाँ से जब आते हैं तो जैसे आजकल एक बहुत चला हुआ है नॉन ड्यूअलिज्म, उसको वेदांत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. लेकिन जब इस चीज़ को हम इग्नोरेंटली अप्लाई करते हैं तो वास्तव में मिस अप्लाई करते हैं. ये कुछ इस तरह की चीज़ है कि कोई कहे हमको, वो गाना सुनते ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है. लेकिन बुलावा और माता तक पहुंचने के बीच में रियल जर्नी है, रियल यात्रा है. और अगर आप इस यात्रा को नहीं समझेंगे, पथ को नहीं समझेंगे, मार्ग में आने वाली जो कुछ आना है उसको नहीं समझेंगे, जो सहायक चीज़ें हैं जो अवरोध करती हैं, तो हम कहीं पर भी गिर सकते हैं बुरी तरह. ठीक है, भगवान साथ होते हैं, उठाते हैं, ले जाते हैं. किंतु ये भी सच है कि अगर हम वही यात्रा एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ जाएं तो वो बड़ा अच्छा रहता है. तो प्रकृति क्या है? प्रकृति वो मार्ग है जिसके थ्रू हमको जाना है. कह देने से कि भगवान अंदर है, भगवान नहीं मिल जाते हैं, ये रियल टाइम में यात्रा है. ठीक है, हम सबके अंदर चैत्य सत्ता है, ये प्रारंभ में बड़ा अच्छा लगता है और प्रारंभ में उसका टच भी मिलता है. लेकिन जब आप उसको खोजने जाते हो तो पता चलता है कि ये तो बहुत ही ऐसा रास्ता है जिसमें कई कई बार जो आपको लग रहा है कि ये सीधा है वो वास्तव में टेढ़ा रास्ता हो रहा है. और जहां आपको लग रहा है ये टेढ़ा, आप देखते हो कि टेढ़ा रास्ता, तो आप छलांग लगा के वहां पहुंच गए. तो ये बड़ी अद्भुत यात्रा है. और इसीलिए माँ बार बार कहती हैं बहुत धैर्य की जरूरत है, पेशेंस की. कई बार लोग बड़े जो अधीर होते हैं वो इस यात्रा को नहीं कर पाते. क्यों? वो चाहते हैं बहुत जल्दी मुझे ये अनुभव प्राप्त हो जाए, मैं योगी बन जाऊं, मैं साधक बन जाऊं. लेकिन धीरे धीरे आप देखते हो कि करना क्या था. करना था आपको वो सब कुछ जो आवरण आपने लपेटा था अपने ऊपर, उसी चीज़ को आपको धीरे धीरे खोना था. और ये आप या तो अपनी मर्जी से खोगे या भगवान छीनेंगे, नहीं तो प्रकृति आपको ले जाएगी अपने रास्ते से. और सबको प्रकृति ले जा रही है. और इस बात की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में भी बहुत विस्तार से श्री कृष्ण कहते हैं यंत्रारूढ़िनी माया. अधिकांश मनुष्य तो यंत्रवत चले जा रहे हैं. और कौन ले जा रहा है इस यंत्र को, चला कौन रहा है? प्रकृति चला रही है. और उससे चलते चलते अंत में वो तैयार हो जाते हैं उसी चीज के लिए जहां पर कोई और ऑलरेडी खड़ा हो गया है, भगवान को सचेतन रूप से ढूंढने लगता है. तो ये प्रकृति है क्या? हम लोग एक तो विचारधारा है कि हम नेचर को गॉड, ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, और हम नेचर को एक मैकेनिकल फोर्स समझते हैं कि जो एक मैकेनिकली चीज़ों को चला रही है. लेकिन वो उसका केवल एक धारा है, एक रूप है जो बाहर से दिखाई देता है. लेकिन इसके पीछे प्रकृति अनेकों अनेकों प्रकार से कार्य करती है. और फिर ये प्रकृति तैयार करती करती अनेकों प्रकार से हमको अपने ही उद्गम स्रोत परा प्रकृति को हैंडओवर करती है. तो ये है इसकी जर्नी. किंतु जो हम लोगों के प्रैक्टिकली, क्योंकि योग को श्री अरविंद कहते हैं कि व्यवहारिक मनोविज्ञान है, इट इज़ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है, ये बल्कि भारत की अनेकों अनेकों डिस्कवरीज में से एक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है द थ्री मोड्स ऑफ नेचर, त्रिगुणात्मक प्रकृति. साइकोलॉजी में एक साइकेट्रिस्ट के नाते मैं कह सकता हूँ इसने मुझे बहुत सहायता की है जीवन को समझने में, मनुष्य को समझने में, अपने आप को समझने में. क्योंकि इस ये सब जगह ऑपरेट करती है, ये यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम है. अणु के अंदर भी त्रिगुणात्मक प्रकृति कार्य कर रही है. कैसे? देर इज अ फोर्स ऑफ इनर्शिया, देर इज अ फोर्स ऑफ काइनेसिस, एंड देर इज अ फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम. यही तीनों कार्य करती है. अब ठीक है, हम लोगों ने इसको पॉपुलराइज नहीं किया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि हमने उसको विश्व प्रकृति के अंतर्गत देखा. परंतु यही तीनों चीज़ें जो अणु के अंदर, इन्हीं तीनों के परस्पर मेल जोल से अणु की अणु स्थिर रहता है और फिर आगे अणु की जो भी यात्रा होती है, जो भी उसको करना है, ये तीन मूल शक्तियां हैं। यही चीज हम देखते हैं अणु से लेकर के देवताओं के अंदर भी। अब इन्हीं के न्यून वेश समावेश से, कुछ कम कुछ ज्यादा से, हम देखते हैं कि मनुष्य के विकास में, अगर हम लेंस को मनुष्य पर फोकस करें तो मनुष्य के विकास में भी इन्हीं तीनों का हाथ रहता है। और सबसे पहले प्रारंभ में मनुष्य जड़ चिन्ह में होता है, जड़ तत्व से जुड़ा हुआ होता है, फिजिकल मैन होता है। और जब वो फिजिकल मैन होता है तो उसके अंदर तमोगुण अधिक प्रधान होता है, क्योंकि तमोगुण खासकर जड़ तत्व का प्रधान गुण है। और क्यों है तमोगुण? तमोगुण के अंदर क्या है? वो स्थिर रहेगा तो स्थिर ही रहेगा, उसके अंदर कोई प्रवृत्ति नहीं होगी आगे बढ़ने की, इनर्शिया की वो शक्ति है। तो जड़ तत्व जहां पर है, इसी को कहा ना कि भाई इट इज द अनलेस उसको कोई इंपल्शन आए तो वो नहीं बढ़ेगा। तो जड़ तत्व का जो प्रधान गुण है वो तमोगुण है। तमोगुण के कारण अंधकार, ऑब्सक्योरिटी, डलनेस, ये सब उसके प्रभाव है। तो मनुष्य के अंदर भी शरीर अधिकतर तमोगुण के अधीन रहता है। और चूंकि हम शरीर के अंदर हैं इसीलिए थकान होती है, एक समय के बाद आपको निद्रा, भोजन, यही उसका तरीका है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पर मनुष्य आता है वो प्राण चिन्ह में होता है, वहां रजोगुण प्रधान होता है। तो उसके अंदर एडवेंचरर, पहले एडवेंचरर नहीं होता है, पहले वो डिजायर्स के अंदर कामनाएं जागती हैं, कामनाओं के अधीन होकर वो इधर उधर जाता है, फिर एम्बिशन जागता है, एम्बिशन के बाद उसमें भावनाएं जागती हैं, ये तीनों उसको नचाती हैं। ये तीनों डिजायर्स रूप ले लेते हैं, एम्बिशन का तो बहुत नाचता है व्यक्ति, फिर भावनाओं का तो वो दूसरे ढंग से नाचता है, ये अस्थिर करती है मनुष्य को, लेकिन इन द प्रोसेस वो उसको इधर उधर घुमाने लगती हैं, नचाने लगती हैं। इसके बाद एक समय चलने के बाद सत्वगुण प्रधान मनुष्य आता है, और सत्वगुण मन जैसे जैसे डेवलप होता है वो सत्वगुण प्रधान होने लगता है। तो जड़ तत्व बॉडी का जो प्रधान गुण है वो तमोगुण है, वाइटल का प्राण का जो मुख्य गुण है वो रजोगुण है, और मन जैसे जैसे डेवलप होता है उसका प्रधान गुण सत्वगुण है। जो माइंड में डेवलप्ड लोग होते हैं वो इंस्टिंक्टिवली इक्विलिब्रियम, हारमनी ढूंढते हैं, और अगर उनको ना मिले जीवन में तो दुखी होते हैं उससे। रजोगुण इसकी चिंता नहीं करता है, रजोगुण तो मैं चला, मेरी मर्जी, जो मैं चाहूंगा वो करूंगा, रजोगुण की ये वो बस मूवमेंट, गति, और उस गति को ही वो प्रगति समझता है। लेकिन जो प्रबुद्ध मन है, जो सत्वगुण प्रधान है, वो चीजों में ऑर्डर, हार्मनी, इसको प्रगति समझता है। और जो जड़ तत्व है वो कहता है मुझे प्रगति से कोई नहीं लेना देना, ना मुझे गति से लेना देना है, मैं जहां हूं जैसे हूं वैसे रहने दो। अब हम देखते हैं कि इसी से अनेकों अनेकों मनुष्यों की मानसिकताएं, एक समय था शेरविन समाज के बारे में भी ये बात करते हैं कि जो तीन प्रकार के समाज होते हैं, तमोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और सत्वगुण प्रधान। तो तमोगुण प्रधान जो समाज होता है वो बताते हैं कि बैलगाड़ी की तरह, ये चैरिट ऑफ जगन्नाथ में है, तो कहते हैं वो बैलगाड़ी की तरह धीरे 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 जाता है, वो बड़ा उसमें जॉय ले रहा है, सेफ्टी, उसके लिए कोई भी नई चीज़ से वो आशंकित होता है। उसको अगर बोलोगे मोटर कार, अरे मोटर कार आ गई, बहुत खराब हो गया, रॉकेट चला गया चंद्रमा पे, ये तो हो ही नहीं सकता है, चंद्रमा जी तो हमारे शिव जी के सिर पर है, रॉकेट कैसे जा सकता है। वो हर चीज़ में वो किसी प्रकार के बदलाव से वो परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अपनी एक छोटी सी सीमा में, कुकुन में रहना चाहता है। तो कहते हैं ये समाज का एक उदाहरण देते हैं, आधुनिक भारतीय समाज, ये जब वो लिख रहे हैं तमोगुण प्रधान हो गया। आप उसको कोई भी चीज का चेंज समझ, उसकी गहराई में क्या है, ये आज नहीं है, अभी रजोगुण आ गया है और सत्वगुण भी जाग गया है, लेकिन उस समय चीजें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहे। और फिर कहते हैं दूसरा होता है रजोगुण। रजोगुण का कैसा होता है? मोटर गाड़ी की तरह जो बहुत तेज स्पीड से जा रही है, तो या तो पहुंचती है या क्रैश करती है। और उसका उदाहरण देते हैं आधुनिक पाश्चात्य जगत जो है वो रजोगुण मोटर कार की तरह, वो समाज रजोगुण प्रधान है। और फिर जब सात्विक समाज का वर्णन करते हैं, कहते हैं सात्विक समाज, पुरातन भारत का जो समाज था वो सत्वगुण प्रधान था। तो आप देखते हैं हर चीज को व्यवस्थित करना, हर चीज के अंदर एक ऑर्डर, हारमनी, उसके लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने, कितने सारी उपाय समाज को व्यवस्थित रखने के उन्होंने बनाए हैं। तो ये तीन प्रकार के समाज, लेकिन ये भी बताते हैं और वो इस चैप्टर के अंत में स्पष्ट होता है कि लेकिन ये तीनों ही समाज ये अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट है जो त्रिगुणात्मक प्रकृति के परे कुछ और है, जिसकी बात हम लोग करेंगे। भोजन में भी यही लागू होता है। भोजन में भी ऐसे भोजन है फ्रिज में रखा हुआ, बासी, झूठन, ये जो सारे भोजन है ये तमोगुण प्रधान है, तीखा, स्पाइसी, मांस, ये इत्यादि रजोगुण प्रधान है। और फ्रूट्स, स्निग्ध, मीठा मीठा माने वो चीनी वाला मीठा नहीं, पर मीठा, ये सत्वगुण प्रधान भोजन है। स्निग्ध जैसे घृतम, ये स्निग्ध सत्वगुण प्रधान भोजन है। और इसके ऊपर उन्होंने पूरा एक साइंस का, चीजों का, भोजन का, खान पीन का, जीवन शैली का, मनुष्य की अवस्थाओं का, सब चीज में उन्होंने त्रिगुणात्मक प्रकृति को देखा। तो ये खोज तो सांख्य के ऋषियों की थी, शेयर, और लेकिन इसकी पुष्टि श्री कृष्ण भी करते हैं, शेयरविंद भी कहते हैं कि ये बहुत ही सुंदर एक डिस्कवरी है जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छी रहती है, हमें अपने आप को समझने के लिए, संसार को समझने के लिए। श्री कृष्ण इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, देख अर्जुन, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं और उनके पास दो तरह की संपदा होती है, एक आसुरिक और एक दैवी। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो असुर कौन है? जो तमो रजोगुण प्रधान है, रजोगुण जो तमस की तरफ जा रहा है वो असुर है, और रजो सत्व प्रधान जो रजोगुण जो सत्व की तरफ जा रहा है वो देवता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और कई चीज अगर आप देखें आज के आधुनिक समाज में, तो वो समझ आती गुणों के आधार पर। जब ये वेस्टर्न वर्ल्ड को अगर आप देखते हैं, ड्रग्स, वायलेंस, हॉरर, ये एक्सट्रीम तमस में जब लोग रहते हैं, जब मन उनका तमस में है, हृदय तमस में है, तो वो बहुत ही वायलेंट सेंसेशन से जागता है। एक बहुत पहले गाना भी आया था कि मुझे कुछ रंज, किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी। मतलब मैं तभी महसूस करूंगा कि मैं जिंदा हूं अगर मेरे अंदर कोई चोट पहुंचेगी, कोई मेरे अंदर दुख पहुंचेगा, तो क्योंकि वो घोर तमस में होते हैं। और इसी कारण आप देखिए, जब कोई व्यक्ति घोर तमस में होता है तो उसको झकझोड़ के जगाने का काम प्रकृति करती है, तब वो पीड़ित होता है, कहता है भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और श्री अरविंद देखिए कहते हैं कि अगर तुम कठोर होगे, तुम बहुत अधिक तमोगुण प्रधान होगे, स्टोन लाइक होगे, तो भगवान का तरीका भी बहुत अलग होगा, हथौड़ा, हैमर ऑफ गॉड। और जितना वो कहते हैं तुम अपने आप को बदलोगे, जितना तुम सूक्ष्म होते जाओगे, उतना ही भगवान भी तुमको जेंटली, फूल के फील, फूल को अलग ढंग से वो डील करते हैं और चट्टान को अलग ढंग से। तो सब कुछ हम देख सकते हैं इन त्रिगुणात्मक प्रकृति के लेंस से। तो ये योग में बड़ी सहायक है, क्योंकि योग में हमको क्या करना पड़ता है? पहले सत्वगुण का विकास करना पड़ता है, क्योंकि यही वो गुण है जो हमें सूक्ष्म बनाता है। इसको तीन प्रकार की बेड़ियां भी बताई गई हैं, जो श्री रामकृष्ण परमहंस बताते हैं। और इनके तीनों के बड़े इंटरेस्टिंग, तमोगुण क्या है? वो लोहे की जंजीर है। जो तमोगुण व्यक्ति होता है वो बिल्कुल बदलना नहीं चाहता। उसको आप बोलोगे ये काम करो या कोई नई चीज लाओगे, नहीं भाई हमारे पुराने तौर तरीके अच्छे हैं, वो नहीं बदलना चाहेगा। तो वो लोहे की बेड़ियां हैं, तो वो तोड़ने में बड़ी कठिन होती है। वो तोड़ना चाहेगा लेकिन तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो भी जान रहा है कि ये लोहे की बेड़ियां हैं, लेकिन वो उसके अंदर पड़ी हुई हैं। कई सुना होगा हमने पहले कि लोग ऐसे कहते थे, भाई हमारी तो कट गई, अब हम क्या बदलेंगे। अब ये वो 40 साल की उम्र से कह रहे हैं, 80 में भी वही कह रहे हैं। तो एक बार मैंने तो पूछा था, भाई आप ये तो 20 साल से कह रहे हो कि हमारी कट गई, कौन सी कट गई आप? नहीं अब ठीक है, हम तो जैसे जी लिए वैसे जी लिए, हम जैसे हमने। तो ये होती है तमोगुण की बेड़ियां, इसको कहते हैं लोहे की बेड़ियां। और जो रजोगुण की जो बंधन है वो है सिल्वर की। अब सिल्वर को थोड़ा ग्लिटर करता है, थोड़े समय में काला पड़ने लगता है, तो व्यक्ति कहता है बदल लें, लेकिन क्योंकि सोना महंगा है तो फिर से सिल्वर खरीद लेता है। कुछ लोग ऑक्सीडाइज सिल्वर को बड़ा अच्छा मान के उसको ही पहन लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये होती है रजोगुण की बेड़ियां। लेकिन तीसरी होती है जो सोने की बेड़ियां, वो आराम से काटी जा सकती हैं, लेकिन वो व्यक्ति कहता है तो बड़ी अच्छी। अब ये सोने की बेड़ियां क्या होती है, सेल्फ राइटियसनेस, हम तो अच्छे हैं और हम प्रूव भी करना चाहते हैं दूसरों की, हम बड़े अच्छे हैं, देखिए हम कितने अच्छे हैं। तो ये जो बेड़ियां होती, जो सात्विक ईगो होती है, ईगो ऑफ द स्पिरिचुअल मैन, ईगो ऑफ द सेज, ईगो ऑफ द थिंकर, ईगो ऑफ द सेंट, ईगो ऑफ द फिलोसोफर, ये छोड़ना बहुत कठिन होता है। क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो मतलब आप तो वहां थे, संत पुरुष थे, दार्शनिक थे, बाबा जी थे, अचानक आप कहाँ आओगे, बच्चा बन जाओगे। और बात है कि बच्चा बनने का आनंद देवताओं को मिलता नहीं है जब तक वो धरती पर नहीं आते हैं। देयर इज अ स्टोरी ऑफ अनुसुईया। वास्तव में उस स्टोरी को एक ढंग से हम देखते हैं, पर वास्तव में देवताओं का बच्चा बन जाना, इट इज देयर ओन इवोल्यूशन। जो धरती पर कुछ क्षणों का जो टच मिलता है उनको चैत्य प्रेम का, अनुसुईया के माध्यम से, और वो देखते हैं कि हम भी अपने मान को लेके बैठे हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, और यह मनुष्य कितना सहज चैत्य प्रेम के भाव से रहता है, तो वो बच्चे जैसे बन जाते हैं। तो बड़ी सुंदर स्टोरी है, कई लेयर्स पे होती है पौराणिक कथाएं। तो ये इसके पार जाना, त्रिगुणों के पार जाना वास्तव में मनुष्य की नियति है। तो प्रारंभ में इन तीनों गुणों में एक का चुनाव करना है तो सत्वगुण चुनना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, सत्वगुण कैसे डेवलप होता है, रजोगुण को कंट्रोल करके। कहते हैं आप रजोगुण आपको बहुत उछाल रहा है, सत्वगुण कहता है नहीं 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 नहीं, बी इन मॉडरेशन। चिड़िया के पंख थोड़े थोड़े कुतरता है इधर उधर से, तो फिर चिड़िया उड़ना भूल जाती है। जब उड़ना भूल जाती है तो चिड़िया क्या करती है, एक जगह बैठ जाती है। तो सत्वगुण जब हम डेवलप करने की चेष्टा करते हैं रजोगुण को दबा के, तो तमोगुण कहता है आई हैव अ चांस। तो सत्व के साथ तमस जुड़ जाता है, ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। और दूसरी ओर अगर तमोगुण को हम प्रधान बना के चलें, वो तो फिर प्रोग्रेस ही नहीं होगी। और केवल रजोगुण पर चलें तो भी कठिन कठिन है, वो तो हमको किधर किधर भटका ले जाएगा। तो वास्तव में इन तीनों के परे की अवस्था में मनुष्य को जाना होता है। और इसमें दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है निस्त्रय गुण्य और दूसरी होती है त्रिगुणातीत। दिस इज सटल डिफरेंस, क्योंकि दो शब्द हैं तो ये दो शब्द तो एक ही चीज के लिए नहीं हो सकते। तो निस्त्रय गुण है जब हम गुणों के परे चले जाते हैं। और कैसे परे चले जाते हैं, हम अपने डिटैच होके गुणों से ऑब्जर्व करते हैं, तो देखते हैं कि अरे कहाँ से क्या चीज़ हमको नचा रही है। पहले तो हम उसमें बहते थे, अब दिखता है कि हम तो बहते थे लेकिन ये तो बड़ी, ये तो हमको कहाँ बहा ले जा रही थी। तो अनुभव के द्वारा धीरे धीरे व्यक्ति सीखने लगता है, अगर वो रियली इफ ही इज ए स्टूडेंट ऑफ हिमसेल्फ, स्वाध्याय जो गीता में कही गई है, तो खुद ही देखता है कि ये रजोगुण ने तो मुझे बड़ा नचाया है। तो वो देखता है कि स्टूडेंट बनता है कि अरे ये रजोगुण की इम्पल्स आ रही है इधर से, ये मुझे पुश कर रही है, ये करो ये बोलो, फिर आप डिटैच्ड हो, फिर आप कहते हो नो आई विल नॉट एक्सप्रेस दिस, क्योंकि आप जान चुके हो कि ये रजोगुण आपको कहाँ ले जा रहा है। ये अनुभव के साथ आता है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज से नहीं आता है, क्योंकि कई बार ये बातें व्यक्ति को लगता है पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, बट विद एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ दिस कम्स। उसी प्रकार से जब सत्व गुण के उसमें चलते हुए आता है, तो वो देखता है कई चीज़ें हैं जिनमें मैं बोझ लेकर के चल रहा हूँ और बंधन में बनता जा रहा हूँ। मुझे स्वयं अंदर से महसूस हो रहा है कि डिवाइन की विल मेरे अंदर कुछ और है, लेकिन सत्व गुण यानी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, एक मास्क हमने सत्वगुण का, साधु का पहना हुआ है, साधु बच्चे का पहना हुआ है, तो उस मास्क को छोड़ना हटाना बहुत कठिन होता है। तो निस्त्रय गुण वो अवस्था है जब हम डिटैच्ड होकर ऑब्जर्व करते करते धीरे धीरे हम इन गुणों से बंधते नहीं हैं। तब क्या होता है, हमारे अंदर ये दोहरी अवस्था होती है, एक अंदर में जो मुक्त है निस्त्रय गुण है, वो हमारा आत्मन है। दूसरा वो आत्मा आप क्या कर रही है, साइकिक बीइंग, वो सैंक्शन दे रहा है, वो देख रहा है कि मुझे तमोगुण आ रहा है, निद्रा आ रही है, वो सैंक्शन देती है रेस्ट कर लेना अच्छा है। ये नहीं कि रजोगुण के हिसाब से वो उठेगी भागेगी, चलो आइसक्रीम खाने चलो, चलो पिक्चर देखने चलो, वो नहीं बहेगी। वो देखेगी शरीर को रेस्ट की ज़रूरत है या मन को रेस्ट की ज़रूरत है, थक रहा है, तो उसको सैंक्शन देती है। या वो देखती है रजोगुण, अब वो देखती है कि ये रजोगुण जो है वो क्योंकि आप गुणों के ही अधीन, प्रकृति तो वैसे चल रही ना आपका, आपका शरीर मन प्राण इनके अधीन चल रहे हैं, तो देखती कि ये रजोगुण मन को या हृदय को कैसे कचोट रहा है, तो उसको सत्वगुण के हिसाब से मॉडिफाई करती है। और लेकिन अंदर में आप अनअफेक्टेड हो। अनअफेक्टेड किस तरह से हो, आपके सतह पर जॉय और ग्रीफ आएंगे, आपको कुछ घात संघात होंगे, अगर आप रजोगुण में हो तो आपको दुख लगे होगा, सुख होगा बाहर के प्रकृति में, लेकिन अंदर आप इससे बहुत ईजली अलग हो जाओगे और आप अंदर में फ्री रहोगे। यहां तक कि कई बार देखने वालों को समझ नहीं आएगा, उनको लगेगा कि ये व्यक्ति उनके मापदंड से पागल है, क्योंकि उनके हिसाब से आपको इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। तो आप उस चीज को अनुभव भी कर रहे हो लेकिन आप अंदर में फ्री भी हो, मतलब आपके अंदर दो बीइंग डेवलप हो जाते हैं। ये जो द्वासो पढ़ना वाली चीज है और अन्य तरह से अनुभव आता है, ये होती है निस्त्रगुणी की अवस्था। इसके परे क्या होती है, त्रिगुणातीत। अब क्या है कि अब आप धीरे धीरे हायर नेचर आपके लोअर नेचर को सब्स्टिट्यूट करना प्रारंभ कर रहा है। अब चूंकि आप फ्री सैंक्शन नहीं दे रहे हो लोअर नेचर को, आप उसके मास्टर बन गए हो एक तरह से, तब नेचर क्या कहती है लोअर नेचर की, भाई मेरा काम हो गया, तो और सोल जो फ्री है वो माँ का आवाहन कर रही है। तो धीरे धीरे अब डिवाइन लाइट और उनकी जो प्रकाश है, उनकी जो फेलिसिटी है, सुख और प्रकाश, वह सत्वगुण को इन्वेट करने लगता है और रिप्लेस करने लगता है। तो अब क्या होता है कि जो नॉलेज शास्त्रों के बेसिस पर थी सत्वगुण के अंदर, शास्त्र हर चीज का है, डू इट इन ए सर्टेन वे, उसकी जगह एक इंट्यूशन ऑपरेट करने लगती है, ए न्यू काइंड ऑफ नॉलेज बिगिंस टू ऑपरेट। तो वो जो सत्वगुण है उसका चेंज होता है और उस नॉलेज के अंदर जॉय होता है। आप देखें कि स्कॉलरली नॉलेज और एक इंट्यूटिव नॉलेज में ये डिफरेंस है। जब श्री राम कृष्ण बातें कर रहे हैं तो वो स्कॉलरली नॉलेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे उसमें एक आनंद आ रहा है। श्री अरविंद भी अगर आप थोड़ी इंग्लिश का हो तो उसमें एक जॉय है। वो जॉय क्यों आता है, क्योंकि वो एक दूसरे रीजन से वो ज्ञान आ रहा है बरस करके। उसी प्रकार से जो रजोगुण है, रजोगुण इज रिप्लेस्ड बाय ल्यूमिनस फोर्स। तो रजोगुण का नॉर्मल क्या सीख करता है, रजोगुण जॉय ऑफ लाइफ, लेकिन कैसे, डिजायर के माध्यम से। तो उसको कोई चीज मिल जाती है तो खुश होता है, जब चली जाती है तो दुखी होता है, रजोगुण का ये स्वभाव है। लेकिन जब रजोगुण रिप्लेस हो जाता है भगवान की ओजस भी प्रकाश में शक्ति से, ल्यूमिनस फोर्स से, तो क्या होता है कि वो जो चीज आपके लिए आवश्यक है वो आपको मिल जाती है, और जो चली जाती है उसका आपको दुख नहीं होता है। आपको ये पता है कि ये चीज इसका ल्यूमिनस फोर्स है ना, वो जानती है ये तुम्हारा अधिकार नहीं है इस पर, इसको जाने दो। सो ऑटोमेटिकली इट नोज कि, और वो किसी भी चीज से डिजायर सेल्फ से नहीं जुड़ती है, जो पकड़ के सदा सदा के लिए हम मरने के बाद भी मिलेंगे पता नहीं कहाँ और मकबरा बना दिया, ये सब नहीं आता है, क्योंकि वो जानती है कि ये चीज़ें वी आर ट्रस्टीज, जो चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं। और जो तमोगुण में क्या होता है कि सेल्फ एग्जिस्टेंट पीस एस्टैब्लिश होने लगती है। तो ये गुणों का रूपांतरण, त्रिगुणातीत अवस्था, और इसके बारे में भी श्री अरविंद बहुत विस्तार से बताते हैं। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है, प्रोसेस है डिटैचमेंट, प्रकृति से डिटैच्ड होकर हमको देखना, सैंक्शन देना सीखना, और ये तभी हो सकता है जब हम डिटैच होके। इसीलिए माँ एक जगह कहती है बट देर इज ऑलवेज अ चॉइस। किसी ने कहा माँ लेकिन हमेशा चॉइस नहीं होती, नो देर इज ऑलवेज अ चॉइस, इट मे बी स्प्लिट सेकेंड। और धीरे धीरे ये देखते हैं कि सो ट्रू, वो आप कभी बहुत बड़ा बहाव आया फिर भी आपके पास चॉइस थी, लेकिन अब एक बार आप बह गए फिर आएगी चॉइस, लेकिन दूसरे ढंग से आएगी, दूसरी चट्टान पर जब पटके जाओगे तब आएगी, अरे हमको वहीं पर चॉइस कर लेनी थी। बट दैट इज हाउ वी लर्न। तो ये थ्री मोड्स ऑफ नेचर हैं, अब इनके बारे में माँ श्री अरविंद बता रहे हैं। और प्रत्येक जो प्रकृति की जो गति है उसका एक पर्टिकुलर गुण है। सत्व इज द फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ट्रांसलेट्स इन क्वालिटी एज गुड एंड हार्मनी एंड हैप्पीनेस इन लाइट। जो भी सत्वगुण प्रधान होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही होती है, वो चाहते हैं हार्मनी, इक्विलिब्रियम हो, एक सुंदर शांति, सब की शांति नहीं चाहते, सब कुछ सुंदर हो और सामंजस्यपूर्ण हो, बैलेंस में हो हर चीज, वो किसी भी एक दिशा में अति नहीं करेंगे, उनकी लाइफ बड़ी डिसिप्लिन रहती है, हर चीज का उसमें स्थान है। Rajas is the force of kinesis and translates in quality a struggle and effort, passion and action. Rajogun कहता है इसमें हमको कोई मजा नहीं है, हमको तो कुछ चाहिए, पहाड़ चढ़ना है, हमको कुछ चैलेंज लेना है, हमको तो लड़ाई झगड़ा करना है, बिना स्ट्रगल के जीवन क्या है. तो ये रजोगुण प्रधान का एक, अब देखिए हर एक चीज का अपना पॉजिटिव और नेगेटिव है, नॉर्मल लाइफ में हर चीज की आवश्यकता होती है. तमस इज द फोर्स ऑफ इनकॉन्शियंस एंड इनर्शिया एंड ट्रांसलेट इन क्वालिटी एज ऑब्सक्योरिटी एंड इनकैपेसिटी एंड इनएक्शन. तमोगुण प्रधान व्यक्ति से पूछो, अगर आप बोलेंगे कि देखो ये सब करना होता है, अरे भाई ये सब क्यों करना होता है, हमको कोई सिंपल सा तरीका बता दो, तो माला लेके बैठ जाओ, सिंपल, दैट्स द सिंपलेस्ट ऑफ वे. वो भी कठिन होता है, वो भी आप करो तो बड़ी सुंदर बात है, लेकिन अपनी प्रकृति को स्टडी करना, जैसे इक्वेनिमिटी की हम लोग पढ़े थे, समता, अब समता कैसे प्रयास अभ्यास करना, ऐसे ही करना. आप स्टडी करोगे, देखोगे कि इस ये जो हुई घटना, इससे मेरे अंदर उद्विग्नता हो रही है, तो आप फिर क्या करोगे, और अंदर में आपके कोई एक जगह ढूंढोगे जहां आप उद्विग्न नहीं हो रहे हो, आप चेष्टा करोगे कि ये उद्विग्नता उत्तेजना हटे, और जैसे जैसे प्रयास करोगे देखोगे आप एक अंदर में ग्राउंड खुलता जा रहा है, एक भूमि, पहले वो छोटी सी होगी, फिर वो बढ़ेगी, फिर आप देखोगे जब भी उद्विग्नता या उत्तेजना आ रही है, यू कैन स्टेप बैक, वो द्वार खुल जाता है, देयर इज अ स्पेस दैट इज क्रिएटेड, जो हमेशा थी लेकिन हम जानते नहीं थे क्योंकि हम प्रकृति के भाव में बह रहे थे. लेकिन इनर्शिया क्या कहता है, अरे भाई ठीक है श्री अरविंद ने लिखा है, लेकिन अब पढ़ना कौन पढ़ेगा. ये भी लोग 30 साल की उम्र से 70 साल की उम्र तक यही कहते रहते हैं, अरे कुछ तो पढ़ लेते ना, कम से कम और कुछ नहीं, एक किताब दो किताब थी, नहीं नहीं पढ़ते हैं. अब आश्चर्य होगा, और इतने जस्टिफिकेशन है इसके, क्यों, तमोगुण. और कोई नई नॉलेज अगर आ रही है, श्री अरविंद माता जी ने कुछ कहा है, आपके पुराने जो समझ है जीवन की उससे टकरा रही है, तो आप क्या चुनते हो, जो पुराना ट्रेडिशनल कंफर्ट जोन है आपका. आप समझने की भी चेष्टा नहीं करते हो कि श्री अरविंद माता जी जो नई चीज ला रहे हैं क्यों ला रहे हैं, क्यों बता रहे हैं. ज्ञान की प्यास नहीं होती है, तमोगुण में ऑब्सक्योरिटी है, और वो भगवान की ओर भी उसको अल्टीमेटली उसी भाव में सब कुछ बदल देगा मैकेनिकली. जैसे मंदिर जाके आपने माथा टेक लिया, वैसे आपने आश्रम के बाहर ऐसे कर लिया, करो, अच्छी बात है, रुको मत वहां पर, मतलब दैट इज नॉट एनफ कि भाई आज का मेरा कोटा पूरा हो गया. तो दैट इज व्हाट इज, ये ठीक है आपके अंदर एक भाव जगा, नहीं भी जगा, आपने मैकेनिकली किया, लेकिन डोंट स्टॉप विद देयर. तो ये तमोगुण. अवर ओन नेचर ऑफ माइंड लाइफ एंड बॉडी इज नथिंग एल्स देन सच ए फॉर्मेटिव कॉम्बिनेशन एंड पॉइज. हर मनुष्य के अंदर ये इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, और इसी के, कोई भी व्यक्ति केवल एक धारा में नहीं बहता है, ये तीनों धाराएं त्रिवेणी की तरह गुथी हुई हैं. इसलिए मुझे जो पुराने समय में ना जो लड़कियों की चोटी बनाते थे, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़े होके ये समझ आया कि ये चोटी क्या सिखा रही है. देखो आप देखोगे जो बनाते तीन धाराएं, तीन उसमें होती है, पहले तीन में बांटते थे, फिर उनको गुथते थे, और उसके ऊपर क्या होता था, आपका सिर. तो ये एक्चुअली बड़ी सिम्बॉलिक चीज है, भारत में सब चीजें सिम्बॉलिक है, नीचे में रिबन लगा हुआ है आपके, अब वो एक आपका वो है, कहते ना एंटेना या अट्रैक्शन. अब ये तीन धाराओं में कभी एक कभी दूसरी, आप बढ़ते 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 आप अंत में कहाँ पहुंचते हो, अंत में वहां पहुंचते हो जहां ये तीनों मिल करके एक बन जाती है. तो माता जी से कई बार यहाँ लोग पूछते हैं कि यहाँ पे इनिशिएशन कैसे होता है, तो अब कहते थे पुराने लोग यहाँ के, भाई चोटी पकड़ ली जाती है भगवान. वो चोटी क्या होती है, आपके प्रकृति की जो ये, अब शिखा, हमारी जो प्रकृति है वन पॉइंटेड हो गई, तो शिखा है ब्राह्मण की, जो शिखा है प्रकृति वन पॉइंटेड है. ब्राह्मण की सारी चीजें लक्षण वैसे होते थे, सात जने उस सात उसका त्रिपुंड, वो और बातें बाद में यही सब रह गए, और साथ में मोटा पेट और दान दक्षिणा के प्रति आकर्षण और मिष्टी का लोभ यही बच गया, तो भगवान ने वो सब तोड़ दिया. अब ब्राह्मणत्व का सरनेम से कोई लेना देना नहीं होंगे. अमृता की चोटी काटी थी। लेकिन अब देखो तो ये, क्योंकि भारत ने इतना डेवलप किया था अपने जीवन की हर आचार विचार व्यवहार में, वो कहीं ना कहीं नमस्ते ऐसे ये नहीं हाय बाय हो रहा है, तो हर चीज में तो चोटी इज द त्रिगुणात्मक प्रकृति का प्रतीक जो ले जाके आपको अल्टीमेटली, वो कितने भी नीचे से शुरू करो, वो देखिए स्पाइन के साथ जा रही है। मुझे पता नहीं इसका स्पाइन के साथ कोई ऑकल्ट सिग्निफिकेंस था कि नहीं, आई डोंट नो, पर वो स्पाइन से होती होती अंत में वो आपके सिर पे जा रही है। और बॉडी भी, ह्यूमन बॉडी ऐसे बनी है अंदर में, जो हेड और स्पाइन एक सांप की तरह जिसका वो फन खुलता है, और कुंडलिनी शक्ति भी ऐसी जागृत होती है। तो अगर आप देखें तो हमारा जो समाज था कितना अधिक ज्ञान प्रधान समाज था। ये और बात है कि बाद में हमने उस सबको भूल गए, और तोड़ा भी भगवान ने, चूंकि हम भूल गए, इट हैज ऑल बीन ब्रोकन। तो ये आगे तीनों गुणों के स्वभाव बताते हैं। जैसे जो तमोगुण प्रधान है उसको आपसे कुछ नहीं सुनना है, जो उसको अपने कंफर्ट जोन में रहना है उसको रहने दीजिए, डोंट डिस्टर्ब हिम। रजोगुण प्रधान है उसको झगड़ा करना है आपसे, आप उससे कुछ भी कहेंगे उसको बट इफ जो सत्वगुण प्रधान है उसके अंदर ज्ञान की थोड़ी प्यास होती है, तो उससे आप एक कहते हैं ना डिस्कशन कर सकते हो, इसीलिए डिबेट और डिस्कशन में अंतर होता है। और तीसरा होता है क्वारल, तो ये अलग अलग। ओके, तो सत्व का, रजस का, तमस का। अब श्री अरविंद इसकी प्रैक्टिस पे बता रहे हैं। When the साधक, ये पेज 236 पर, When the साधक has once stood back from the action of प्रकृति within him or upon him, and not interfering, not attending or inhibiting, not choosing or deciding, allowed its play, देखिए कितनी इसमें करेज चाहिए इस पथ पे चले। सत्व आपको नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपका इनहिबिट कर देगा। इसीलिए श्री अरविंद इस योग के बारे में बताते हैं कि कई बार की नॉर्मली जो सत्वगुण प्रधान है वो मेंटल कंट्रोल से जीवन को चलाते हैं, क्योंकि वही उनके पास कंट्रोल सिस्टम है। ये नहीं कि बुरा है, अच्छा है, लेकिन जब सत्वगुण की गांठ खोलनी होती है ना, बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि भगवान आपके मेंटल कंट्रोल को लेके साइकिक कंट्रोल से रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जो मेंटल कंट्रोल से चीज़ें दबी हुई होती हैं वो आपकी खुल जाती हैं। अब ये बड़ी स्लिपरी स्लोप है, जो रजोगुण प्रधान बोलेगा, बोले हाँ 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 देखो, जैसे एक यहाँ के थे वरिष्ठ साधक जिपमर में एडमिट हुए, तो हर बात में उनको मीन मेक निकालना, ये ऐसा क्यों है, आपके यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, ये गंदा है, लोग ऐसे हैं, डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कहा, आप तो आश्रम से हैं, योग कर रहे हैं, आपको तो शांत होना चाहिए, बात बात पे क्रोध क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आप नहीं समझोगे, ये रूपांतरण का योग है, आप नहीं समझोगे डॉक्टर। अब वॉट एवर इट इज, गलत नहीं बोला, लेकिन वो और बात है कि अब ये जस्टिफिकेशन भी कर सकते हैं लोग, बिकॉज अब देखिए आप उस, ये आएगा, ये हर व्यक्ति को इस योग में एट सम पॉइंट, क्योंकि अगर आप मेंटल कंट्रोल से, तो आप देख ही नहीं रहे हो उस चीज को। आप ध्यान से पढ़िए इस सेंटेंस को, ये नहीं कि आपको लूज कर देना है जबरदस्ती कि हाँ भगवान ने कहा हम वाइटल में कूद जाते, ये नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर चीजें उठेंगी जाएंगी, तुमको उनको ऑब्जर्व करना है। अब यहां पर व्हेन द साधक हैज वंस स्टूड बैक फ्रॉम द एक्शन ऑफ प्रकृति विद इन हिम और अपॉन हिम एंड नॉट इंटरफियरिंग नॉट अटेंड अमेंडिंग और इनहिबिटिंग not choosing or deciding, allowed to play and analyzed and watched the process, he soon discovered that our modes are self-dependent and work as a machine, once put in action, works by its own structure and propelling force. तब आप देखते हो कि ये चीज तो ऑटोमेटिक ये काम हो रहा था, मैं आइडेंटिफाई कर रहा था, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे प्रेम हो रहा है, मुझे घृणा हो रही है, मुझे जलसी हो रही है, वो देखता है कि ये तुम नहीं हो भाई, वो तरंगे आ रही हैं और आप उन तरंगों में बस बह जाते हो, तो आप कहते हो इट इज मी। इसीलिए प्रारंभ में इस योग में जब व्यक्ति उतरता है तो कई बार उसको बहुत प्रकार की चीजें जो कल्पना नहीं कर सकता था, नॉर्मल लाइफ में एक आप कई चीजें हैं जिसमें नहीं उलझते हो, तो आपके अंदर एक अपने बारे में भी बड़ा सुंदर एक कहते ना मैं तो साधु हूं, और बाहर भी यही रहता है, सामाजिक प्राणी एक साधु का एक चोगा ओढ़े हुए रहता है, प्राइवेट लाइफ में हो जो भी हो, मन उसका कचरे से भरा हुआ हो, लेकिन भगवान तो उसकी पूरी क्लीनिंग करते हैं। तो जब आदमी इन चीज़ों को देखता है तो पहले उसको बहुत अपने ही बारे में गिल्ट की फीलिंग्स शुरू हो जाती हैं कि अरे मैं ऐसा हूँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। नहीं, फिर वो धीरे धीरे उनसे अपने को डिटैच करता है, तब वो देखता है कि अरे ये प्रकृति का खेल है, और तब वो बाउंस बैक करता है लाइक दिस, फिर वो सैंक्शन देना बंद करता है, फिर वो उससे फ्री हो जाता है। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। क्रोध आया, आप बाहर कई कारणों से क्रोध नहीं करते हैं लोग, क्योंकि आप क्रोध करेंगे तो अगला कोई कम नहीं है, आपकी नौकरी भी जा सकती है, यहां आपकी नौकरी जाएगी नहीं, माता जी की गारंटी है। आपने ज्वाइन कर लिया आश्रम, कोई आपको नहीं निकाल सकता, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे कर लो। ऐसे लोग हैं जो काम पे नहीं जाते हैं, आप गालियां दे लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये फ्रीडम, फ्रीडम में क्या होता है ना, आपके अंदर का चीज बाहर आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाहर आप एक सोशल जो कंस्ट्रक्ट है उसके कारण ये चीजें छिपी रहती हैं, दबी रहती हैं। अब यहां पे कुछ लोग इस चीज को नहीं समझ पाते तो उससे आइडेंटिफाई करके कहने लगते हैं ये मेरी प्रकृति है, ये नहीं कहना है, कहना ये प्रकृति है और यह मैं हूं, यह मेरी प्रकृति है नहीं, यूनिवर्सल नेचर है। फिर आप देखते हो कि सबको ये अपने अपने ढंग से नचा रही है, लेकिन मैं यह नहीं हूं, इससे अलग हूं। ये फर्स्ट स्टेप है इस योग का। तो बाहर से वो आएंगी तरंगे, छुएंगी जाएंगी, हो सकता है आप उसके कुछ क्षणों के लिए क्रोधित हो जाओ, फिर आप स्टेप बैक करोगे। तो इस तरह उतरते चढ़ते गिरते लुढ़कते पुढ़कते, और खासकर जब भगवान का हाथ पकड़े रहोगे या भगवान आपका हाथ पकड़े रहेंगे, आपको ले ही जाएंगे, जैसे माता या पिता रास्ते पे चल रहे हैं, बच्चे का हाथ पकड़े जरा तेज चढ़ते, लड़का बच्चा चल नहीं पा रहा है, फिर वो पीछे देखते हैं, देखते हैं कि ये तो गिर पड़ रहा है, तो उसको थोड़ी देर गोदी में ले लेते हैं, फिर नीचे रख देते हैं। तो ये योग की यात्रा का एकदम संक्षिप्त वर्णन है। तब हम ये डिस्कवर करते हैं, द फोर्स एंड द प्रोपल्शन कम फ्रॉम प्रकृति एंड नॉट फ्रॉम द क्रीचर। अगर वो फोर्स नहीं होगी, और इसको इसका एक बड़ा सिंपल उदाहरण है, कई बार लोग होते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आता है, तो ये तो वेल नोन स्टोरी है, मैंने भी पूछा है, मैंने कहा दिच्छ दिखाओ कैसे आता है। कहते नहीं अभी नहीं आ रहा है। नहीं, आप तो कहते ना आता है, कैसे आता है? आप देखिए, आप नहीं कर सकते हो अपने आप को, प्रकृति की तरंगे आती हैं, और अगर प्रकृति आप पर पूरा ओवरराइड कर जाए तो वो कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, आप उसके बिल्कुल कहते ना यू विल बिकम दैट एंगर ऑल द टाइम। वरना ऑर्डिनरीली वो प्रकृति जब आती है उसकी करंट तो उछलता है, और जब नहीं आती है करंट तो आप नहीं कुछ कर सकते हो। तो यू आर नॉट दैट, ये फोर्स आती है और वो टाइम टू टाइम सर्कुलेट करती है। ये भी देखा होगा, खासकर दिन और रात में डिफरेंस होता है। रात में क्योंकि तमोगुण आच्छादित होता है, तो रात को तमोगुण की फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, जितनी भी राक्षसी आसुरिक होस्टाइल फोर्सेज हैं, रात को उनका फ्री प्ले होता है। दिन के समय जनरली सात्विक राजसिक ये फोर्सेस का प्ले होता है। तो ये इस तरह से हम देखें तो जीवन को, और फिर बड़ा सुंदर वो है, देन ही रियलाइजेज हाउ मिस्टेकन वॉज हिज इंप्रेशन दैट हिज माइंड वॉज द डूअर ऑफ हिज वर्क्स, हिज माइंड वॉज ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ हिम एंड ए क्रिएशन एंड इंजिन ऑफ नेचर। मन भी प्रकृति ने गढ़ा है। और फिर आती है बड़ी सुंदर लाइन, नेचर वॉज एक्टिंग ऑल द वाइल्ड इन हर ओन मोड्स, मूविंग द थ्री जनरल क्वालिटीज अबाउट एज ए गर्ल माइट प्ले विद हर पपेट्स। तो ये हम प्रकृति के डॉल हैं, वो डॉल प्ले कर रही है। गुड्डे गुड़ियों की शादी भी होती थी, गुड्डे गुड़ियों का ये भी हो, सारा गुड्डे गुड़िया का खेल। एक जगह सावित्री में एक लाइन है, द ए थिंकिंग पपेट इज दिस माइंड ऑफ लाइफ। आगे कहते हैं द कॉन्शियस डॉल is pushed in a thousand ways. तो फिर इस कॉन्शियस डॉल को भगवान के हाथों में सौंपती है, तब वही है कि वो बंदर हनुमान बन जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस? प्रजाति सेम है, लेकिन हनुमान भगवान की शरण, कहते हैं आप मुझे नचाओ, दैट इज द डिफरेंस. तो ये पहली चीज उसको पता चलती है. ही डिस्कवर्स His ego was all along a tool and plaything. His character and intelligence, his moral qualities and mental powers, his creation and works and exploits, his anger and forbearance, his cruelty and mercy, his love and his hatred, his sin and his virtue, his light and his darkness, his passion of joy and his anguish of sorrow, were the play of nature to which the soul attracted वन एंड सब्जेक्टेड लेंट दिस पैसिव कॉन्करेंस. इसलिए भगवान पाप पुण्य का हिसाब किताब नहीं करते हैं. उनको पता है कि उन्होंने जो प्रकृति है उन्हीं की प्रकृति है, उसमें ये नाच रहा है. क्योंकि हिसाब किताब करते तो किसी के लिए होप नहीं होती है. वो ले जाते हैं, नाचते नाचते एक टाइम आता है, आप कहते हो भगवान कितना नचाओगे आप वाला, वो ओरिजिनल वृंदावन वाला नाच नचाओ. तो कहते पहले तो तैयार हो जाए इसमें नाच नाच के, जब तू थकना भूल जाएगा ना तब मेरे साथ नाचेगा. तो इस प्रकार से तैयार होती. इसलिए ये जो हम लोग जज करते हैं लोगों को, इसको लोग बंधे हैं, विवश हैं, प्रकृति से अपनी विवश हैं. एंड येट द डिटर्मिनिज्म ऑफ नेचर और फोर्स इज नॉट ऑल. द सोल हैज ए वर्ड टू से इन द मैटर, but the secret soul, the purusha, not the mind or the ego, since these are not independent entities, they are parts of nature, for the soul's sanction is needed for the play. अब यहाँ पर शेरविंद का योग अलग होना शुरू हो जाता है. ट्रेडिशनल योग में आप अपने को अगर सेपरेट कर लो, प्रकृति का खेल देख रहे हो आप, यू लाफ एट इट. कई वो उस दिन भी बात हो रही थी ना कि कुछ योगी, और वो इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि देखो इस संसार में अगर रहना है तो हमको लोअर नेचर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कोई ना कोई चीज को हमको पकड़ के रखना है. स्वामी विवेकानंद जी को क्रोध आता था बहुत इनजस्टिस पर, अब भारत के बारे में कुछ कह दो. तो सिस्टर निवेदिता ने कंप्लेन की माँ शारदा को, ये जब ब्रह्म की बात करते तो लगता है पता नहीं कहां पर है, भारत के अगेंस्ट कुछ बोलो तो लगता है कि मुक्का मार देंगे. तो कहते ओ यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम समझी नहीं, ये माया की चादर उड़ा के रखा है डिवाइन मदर ने, नहीं तो भाग जाएंगे ये. तो एक बंधन जो आपको बांध कि आप रूटेड रहो. श्री रामकृष्ण परमहंस भोजन जल्दी से मुझे प्रॉन पकौड़ा बन गया अब, बट श्री रामकृष्ण परमहंस इज एट व्हाट स्टेचर, व्हाट हाइट. तो वो कुछ बंधन को, ये ट्रेडिशनल योग में ये है कि आपको या तो जब तक आपकी शेष कर्म की पूरी जो साइकिल चली है वो खत्म नहीं हो जाती तो प्रकृति अपने आप रुक जाएगी, दैट इज द टाइम आप निर्वाण की अवस्था में चले जाओ. क्योंकि आपके जो कर्म आपने, ये ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ श्री अरविंद की नहीं, तो मोमेंटम जो पास्ट का है वो प्रकृति में चलता रहेगा, आप अलग हो जाओ लेकिन वो चलेगा. क्यों? क्योंकि आपके पास्ट के जो हिसाब किताब है वो पूरे होने हैं लोगों के साथ, संसार के साथ. फिर एक टाइम आएगा जब आप जान जाते हो कि ये धीरे धीरे मोमेंटम, अब ये गति कम होने लग रही है, आप एक अंदर की स्टिलनेस महसूस करते हो एंड देन यू विड्रॉ. ये एक ट्रेडिशनल योग का एक अंडरस्टैंडिंग है. लेकिन यहाँ श्री अरविंद कहते हैं नो, नेचर कैन चेंज. कैसे? नॉट बाई मेंटल कोअर्शन. मेंटल कोअर्शन का परिणाम है युधिष्ठिर, बताते हैं शेर. यहां पर एक व्यक्ति 40 साल रहने के बाद चले जाते हैं तो कहते हैं निरोता कि ये कैसे, ये तो इतना पॉइज्ड व्यक्ति था. और शेरविंद कहते हैं तुम लोगों को कुछ समझ तो है नहीं, उसके अंदर मेंटल कंट्रोल था केवल. तो मेंटल कंट्रोल जिस दिन गया वो योग नहीं है, वो बाहर से एक अरे देखो कैसा साधु है, लेकिन वो मेंटल कंट्रोल है. जिस दिन उसकी छत उड़ जाती है तो आप युधिष्ठिर जैसा कृत्य कर बैठते हो कि अपने भाई पत्नी सबको दांव पे लगा देते हो, एक बार नहीं दो दो बार, और अंत में आप जो भी होता है वो तो पता है. लेकिन ये सोल का, इसीलिए कह रहे हैं नॉट द माइंड्स कंट्रोल, क्योंकि माइंड तो स्वयं पपेट है, परंतु ऑफ द डीपर सोल. ये एक नई चीज है जहां शेरविंद कहते हैं सोल अनुमंता भी है, केवल विटनेस नहीं है, साक्षी नहीं है, वो सैंक्शनर ऑफ द वर्क्स ऑफ नेचर. वो सेल्फ मास्टरी है, वो स्वामित्व है. स्वामित्व वो नहीं है कि हम माइंड से चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, स्वामित्व है कि जब हमारी सोल जो नेचर के अधीन थी अब उससे बाहर आ जाती है. ना केवल बाहर आ जाती है बल्कि वो प्रकृति को अपने प्रेशर से, साइलेंट प्रेशर से प्रकृति की गति को बदलने लगती है. तो यहाँ इस बात की को शेरविंद बता रहे हैं कि सोल सैंक्शन इज नीडेड. एन एस्केप फ्रॉम द एक्शन ऑफ द टू इन्फीरियर गुनास इज वेरी एविडेंटली इंडिस्पेंसेबल इफ यू आर टू ट्रांसम्यूट अवर प्रेजेंट नेचर इन टू ए पावर एंड फॉर्म ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस. तो इसमें कहते हैं कि लेकिन प्रैक्टिस में पहले आप सत्व को कल्टिवेट करते हो. टू इन्फीरियर गुनास, तमस और रजस, इनके अधीन हो तो अभी यात्रा बहुत लंबी है. सत्व क्या लाता है, राइट प्रिंसिपल ऑफ राइट एक्शन, माइंड कहता है कि नहीं ये उचित, बुद्धि का उपयोग, डिसर्निंग इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि, निरशिर विवेक, ये चीजों का डेवलपमेंट ये आवश्यक है. क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान, ये आपको मास्टरी नहीं देगा लेकिन एटलीस्ट कुछ हद तक आपको आगे ले जाएगा. आप अपने अंदर शुभ चीजों का विकास करते हो, दया रादर देन घृणा, क्रोध, उनकी जगह आप अपने अंदर क्षमा का विकास करते हो, दंभ की जगह आप अपने अंदर नति का विकास करते हो. तो ये कॉन्शियस प्रोसेस है जिनके अंदर नहीं है, जो ऑलरेडी मतलब पास्ट लाइफ से आ गया है वो अच्छी बात है. तो सत्वगुण ये चीजें लाते हैं हमारे अंदर जो दैविक संपदा है. तो क्यों, क्योंकि तमस इनकैपेसिटेट्स एंड टेक्स अवे द पावर टू रिस्पॉन्ड टू डिवाइन इम्पल्स एंड द एनर्जी टू चेंज एंड द विल टू प्रोग्रेस एंड मेक अवर सेल्स प्लास्टिक टू ग्रेटर शक्ति. इसलिए तमस को हटाना है. रजस परवर्ट्स नॉलेज, मेक्स अवर रीजन द एकम्प्लिश ऑफ फॉल्सहुड एंड द एबेटर ऑफ एवरी रॉन्ग मूवमेंट. और कैसे जस्टिफाई करेगा ऐसे से, भगवान का उदाहरण देके. ये रजस है जो कहता है अरे देखो श्री कृष्ण ने भी तो वहां पे संग्राम हुआ था ना, तो उन्होंने तो कहा था शस्त्र उठा. अब शस्त्र उठा उन्होंने कहा था, वो आंतरिक अवस्था, बैकग्राउंड, कंटेक्स सब आउट ऑफ क्वेश्चन. कभी भी शस्त्र उठा लो, श्री कृष्ण सोड ब्रांडिसिंग क्षत्रिय नहीं बना रहे थे. तो ये जो रजस है वो नॉलेज को परवर्ट करता है और हर चीज को परवर्ट करता है क्योंकि वो ईगो और एम्बिशन से ड्रिवन है. डिस्टर्ब्स एंड ट्विस्ट्स अवर लाइफ फोर्स एंड इट्स इम्पल्सिस, ओवरसेट्स द बैलेंस एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी. रजस कैप्चर्स ऑल हाई बॉर्न आइडियाज एंड हाई सीटेड मूवमेंट्स एंड टर्न्स देम टू अ फॉल्स एंड ईगोइस्टिक यूज. Even divine truth and divine influences, when they descend into the earthly plane, cannot escape this misuse and seizure. हर चीज का वो मिसयूज कर सकता है. इसी का अभिमान हो जाएगा, हम आश्रम में रहते हैं, आश्रमाइट है. उसमें भी आपके अंदर दो, एक जो आश्रमाइट है, एक जो केवल वॉलंटियर है. फिर उसके बाद आपके और प्रकार के अभिमान. हम आश्रम में रहते नहीं है, हम कभी आश्रम से बाहर निकल के नहीं गए. अब ये तमस भी हो सकता है, इनकैपेसिटी भी हो सकती है, लेकिन उसका भी अभिमान हो जाता है. और अनेकों प्रकार की चीजों का, अनेकों प्रकार से ये रजस डिवाइन ट्रूथ को भी. इट इज ट्रू दैट बीइंग स्टेडफास्ट इन परस्यूट इज ए प्रोफाउंड थिंग, लेकिन बीइंग स्टेडफास्ट इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड ट्रूथ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग स्टक एट वन प्लेस, स्टक इन ए सर्टेन सेंस. इसलिए श्री अरविंद एक बार कहते हैं, जब किसी ने कहा कि आपके पास जो रहते हैं सबसे पहले वो रूपांतरित होंगे, तो कहते हैं कि तब तो सबसे पहले मेरी ये जो लकड़ी की टेबल है ये रूपांतरित होनी चाहिए. उनका एक तरीका था बताने का. ये बहुत सुंदर बात है कि भगवान की चरण पकड़ लो वहां से, लेकिन अगर भगवान का आदेश हो तो भी आप क्या यही कहेंगे कि नहीं आपका आदेश मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस यहां रहने का सुख चाहिए. सच है, यहाँ रहना बड़ी सुख की बात है, कंफर्ट जोन है. तो रजस क्या करता है, हर चीज को एक अपने हिसाब से जस्टिफाई. रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू. तो यहां पर रजस की बात है. An exclusive resort to sattva would seem to be the way of escape, but there is this difficulty that no one of the qualities can prevail by itself against its two companions and rivals. A quiet peace, happiness, knowledge, love, right sentiment can be founded by the principle of light. But if rajas is absent or completely suppressed, the quiet in the soul tends to become a tranquility of inaction, not the firm ground of dynamic change. Ye samasya hai. Satguna aapko right thinking, right feeling, right sentiment, har cheez ka right measure to bata dega, lekin rajogun ko daba ke kar raha hai, to aap usko jeevan mein translate nahi kar paoge. Aap us satya ko jee nahi paoge. Aapke andar wo ek sundar bhav ki tarah bana rahega. और ये सारा बता के फिर बताते हैं कि हमको डिटैच होते जाना है धीरे धीरे. द इनिशियल एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट इज दैट वन बिगिंस टू अंडरस्टैंड वन्स ओन नेचर एंड ऑल नेचर मेड वाइज ऑफ देयर प्रोसेसेस. एट द सेम टाइम ही परसीव्स द ईगो टू बी नथिंग बेटर देन अ डिवाइस एंड द सस्टेनिंग नॉट ऑफ देयर इंटरैक्शन एंड परसीविंग इट is delivered from the ignorance of the lower egoistic nature. Choti yahan ke milti hai. Wo knot jo hai na, wo ego ki knot hai. Jahan se usko lagta hai ki ye differentiation, main hoon. To ye jo bhav hai, aham bodh, I am the doer. Pehle wo kya realize karta hai ki prakriti kaare kar rahi hai. Main sanction de raha hoon. Ya main witness hoon. Sanction tak to nahi, main witness hoon. Jyadatar jo sanctioning, log higher mind ko soul मिस्टेक करते हैं, लेकिन वो इट्स ए डीपर सीक्रेट साइकिक एंटिटी, इसकी बात कर रहे हैं शेरविंद. तो बाद में वो देखता है कि ये जो डूअर का भाव है, काम तो प्रकृति कर रही है लेकिन मैं, मेरे द्वारा कर रही है, ये मैं कौन है. तो तब वो देखता है ये आम बोध भी नेचर का ही कंस्ट्रक्ट है. ही एस्केप्स फ्रॉम द सात्विक इगोइज्म ऑफ द एल्ट्रुइस्ट and the saint and the thinker. Rupantran, ek saint banana, it is not a transformation, is not becoming an ethical man, a saintly person. Shri Aurobindo ka ek patra hai. To kuch log aake poochte hain ki bhaiya koi sant mahatma yahan ho to mila dijiye. To aap kya uttar doge? Ye sant mahatma banane ki factory nahi hai, yahan to kuch aur ho raha hai. और वो जो कुछ और हो रहा है आप उसको समझा नहीं सकते हो, क्योंकि पीपल वांट टू सी दैट सेंटलीनेस, क्योंकि बड़ी अपीलिंग होती है. संत पुरुष, संत स्वभाव अच्छी बात है, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो भी एक ईगो की गांठ है. ही शेक्स ऑफ फ्रॉम इट्स कंट्रोल ऑन हिज लाइफ इंपल्सेस द राजसिक इगोइज्म ऑफ द सेल्फ सीकर एंड सीजेस टू बी द लेबोरियस केयरर ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट and the pampered prisoner or roiling galley slave of passion and desire. He slays with the light of knowledge the tamasic egoism of the ignorant or passive being, dull, unintelligent, attached. Ab ye teen prakar ki egoism kya hoti hai? Sattvic egoism is, main achha vyakti hu, main sant purush hu. Ye bola nahi jata hai, andar mein ye wo music chalta hai background mein. Dekho kitne tumne kya adbhut kaam kiya, देखो तुम्हारी कितनी मास्टरी हो गई है अपने ऊपर, उसको देखो, उसको मास्टरी नहीं, ये सब खुल गया है द्वार, गड्ढा खोदा जा रहा है. तो सात्विक इगोइज्म इज ऑफ द सेंटलीनेस थिंकर. ड्यूटी, देखो मैं हर चीज को कितने व्यवस्थित ढंग से करता हूं. राजसिक इगोइज्म इज बोस्टफुल, एम्बिशियस, ड्रिवन बाय दैट, मैं करूंगा, मैं दान दूंगा, मैं भगवान का काम करूंगा, मैं महान हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूं, इत्यादि इत्यादि. और तामसिक इगोइज्म इसका रिवर्स है, मैं तो पापी हूं, दुराचारी, कुसंगी, सारे अवगुण मेरे अंदर ही हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, मोहे भी पार करो. अब तमोगुण में व्यक्ति क्या कहेगा, यही ये कि उसमें अब टच आ गया कि भाई प्रभु जी मुझे पार करो, लेकिन वो आइडेंटिफाई कर रहा है, इसीलिए वो कह रहा है मैं कुसंगी हूं, मैं दुराचारी हूं, मैं पापी हूं. लेकिन जब आप तीनों से अलग हो जाते हो तो न पुण्यम न पाप हो, इन सब से आप फ्री हो जाते हो। ये अंदर में, ये नहीं कि आपको ये बाहर कोई चीज बतानी है, और ना आप पाप से व्यथित होते हो अपने अंदर और बाहर के जीवन में भी, क्योंकि आप देखते हो कि भगवान का खेल है, ना आप पुण्य से गर्वान्वित होते हो, आप देखते हो कि ये प्रकृति का खेल है जिसके द्वारा वो एक ले जा रही है। तो ये मेंटल इगोइज्म को आपको हटाना होता है और सोल धीरे धीरे सेपरेट होने लगती है। फिर क्या होता है, द सोल इज इनवर्डली सेपरेटेड एंड फ्री फ्रॉम द लोअर प्रकृति, नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट्स कॉइल्स, इनडिफरेंट एंड ग्लैड अबव इट, नेचर कंटिन्यूज टू एक्ट इन द ट्रिपल राउंड ऑफ अवर एंशियंट हैबिट्स। तो बाहर से देखने वाला इसको नहीं समझ सकेगा, इसलिए श्रीमद कहते हैं लेकिन इस योग में तुमको बाहर की प्रकृति को भी चेंज करना, अगर वो चेंज नहीं हुई है तो योर वर्क इज नॉट कंप्लीट। क्योंकि बाहर की प्रकृति अपने मैकेनिकल उसमें इंपल्शन में चलेगी, एंशियंट हैबिट से लेकिन प्रकृति चलती रहेगी। डिजायर ग्रीफ एंड जॉय अटैक द हार्ट, द इंस्ट्रूमेंट्स फॉल इन टू इनएक्शन एंड ऑब्सक्योरिटी एंड वेरीनेस, लाइट एंड पीस कम बैक इन टू द हार्ट एंड माइंड एंड बॉडी, बट द सोल स्टैंड्स अनचेंज्ड एंड अनटच्ड बाई दीज चेंजेस। तो ये ट्रेडिशनल योग का है, जिसको फेमस जो श्री रामकृष्ण परमहंस को कहा था ना किसी ने, क्या फर्क पड़ता है, आई एम वॉकिंग विद माई हैरम, किसी योगी ने कहा था श्री रामकृष्ण को, आई हैव रियलाइज द सेल्फ, तो हाउ डज इट मैटर। तो श्री रामकृष्ण ने कहा था आई स्पिट ऑन योर वेदांत, तब उसने वेदांत से जस्टिफाई किया था। तो श्री अरविंद को जब उन्होंने कहा तो श्री अरविंद कहते हैं बात सही है श्री रामकृष्ण की, बट द योगी एज ए पॉइंट कि अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन ही करना है तो आप प्रकृति से बाहर आ गए, हाउ डज इट मैटर। लेकिन रूपांतरण योग में ये काफी नहीं है। वो कहते हैं कि श्री रामकृष्ण वॉज राइट बट द योगी हैज ए पॉइंट, अगर आपको केवल सेल्फ रियलाइज करना है तो आप सत्य के उससे छलांग लगा देते हो, आप एक बार अलग हो गए तो प्रकृति आपकी, तभी तो ये सारी बातें शंकराचार्य जी ने लिखी, पिशाचवत उन्मत्तवत बालवत जड़वत, ये सारी अवस्थाएं प्रकृति के अंदर आ सकती हैं। अब ये धीरे धीरे ले जाते हैं हमको रूपांतरण की ओर। The static freedom of the soul, no longer witness only and knower, is crowned by a dynamic transformation of the nature. Another action becomes possible. So, another action kya hai? Our body, a passive field and instrument of a greater force and light, it responds to every demand of the spirit's force. Abhi wo kehta hai, haan, kaam to hai, lekin thak gaya hoon main. Thaka hara insaan. Tab wo Bhagwan ke kaarya karne ko sadaiv prastut hai. किसी प्रकार का भी कार्य किसी समय भी हो। बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण है यहाँ पर, द्योमन भाई का एक उदाहरण है, नवजात जी का एक उदाहरण है, कई लोग चंपकलाल जी तो आए हैं, प्रणबदा की बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है, इतनी कम उनकी नींद हो गई है। चंपकलाल जी तो खाते बहुत कम थे कि जो विसर्जन उत्सर्जन की क्रिया है उसमें भी समय लग जाएगा। प्रणबदा जब माता जी 5 दिसंबर के बाद 12 दिन कहा था प्रणब जस्ट बी विद मी, आधे घंटे को जाते थे चेंज करके, जो भी उनका स्नान वान चेंज करके आ जाते थे, उसके बाद ही वॉज विद मदर थ्रू आउट। तो अब देखिए वो शरीर कैसे रिस्पॉन्सिव हुआ होगा। एज इट इज, हाँ, नथिंग। तो ये जो चीज है बॉडी के अंदर, ये चेंज, our kinetic and dynamic vital parts, our nervous and emotional and sensational and volitional being expand in power and admit a tireless action and a blissful enjoyment of experience. आपका प्राण तत्व फिर भगवान का सेवक बन जाता है, expand, किसी भी तरह का भगवान का कार्य हो करने को तत्पर है। वो ये नहीं सोचता मैं कैसे करूंगा क्योंकि मैं तो है नहीं, करने वाले भगवान है, वो आपको सक्षम बनाएंगे। तो वो भगवान की ऊर्जा उसको चलाने लगती है। तो प्राण की जो लोअर ऊर्जा है डिजायर की, वो रिप्लेस होने लगती है भगवान की शक्ति से। द इंटेलिजेंस, द थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव माइंड रिनाउंसेस इट्स सात्विक लिमिटेशंस एंड ओपन्स टू एन एसेंशियल लाइट एंड पीस, एंड इनफिनिट नॉलेज ऑफर्स टू अस इट्स स्प्लेंडेड रेंजेस, ए नॉलेज नॉट मेड अप ऑफ मेंटल कंस्ट्रक्शंस। मेंटल कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, या तो डिफ्लेक्ट करते हैं या डिस्टॉर्ट करते हैं या सीमाओं में डाल देते हैं भगवान के सत्य को। कि अच्छा ये श्री अरविंद का कौन सा वेदांत है, ऐसे पूछते हैं ना, तो ये अच्छा वेदांत की तंत्र है भाई, इस फॉर्मेट से बाहर निकलोगे? जो रियलाइज करता है उसने भी ये फॉर्मेट नहीं डाला, ये स्कूल्स ऑफ थॉट तो आपने बना दिए मन ने। वेदांती जो योग में रियलाइज करता है वासुदेवम सर्वमिति, वो या ये कहता है कि अच्छा मुझे ये वेदांत का अनुभव हुआ है, वो तो उस अनुभव में डूब गया, आनंद ले रहा है। वो ही नहीं कहता कि ही डजंट केयर कि आप इसको किस स्कूल में डाल रहे हो, वो स्कूल्स के परे चला गया है, सिस्टम्स ऑफ थॉट्स, फिलोसफीज, वेज ऑफ लाइफ। तमस इज रिप्लेस्ड बाय डिवाइन पीस एंड ट्रैंक्विल इटर्नल रिपोज। रजस इज रिप्लेस्ड बाय सेल्फ पजेस्ड पावर एंड इलिमिटेबल एक्ट ऑफ फोर्स दैट इवन इन इट्स मोस्ट वायलेंट इंटेंसिटीज डज नॉट शेक द इमूवेबल पीस ऑफ द सोल और स्टेन द वास्ट एंड प्रोफाउंड हेवेंस एंड ल्यूमिनस एबिसेस ऑफ इट्स पीस। युद्ध भी लड़ना पड़े तो वो अब अपनी स्थिरता और शांति को नहीं खोता। इवन इन वायलेंट एक्शन, डिवाइन इंटेंसिटी होती है ना जो हर प्रकार के कर्म में आ सकती है। सत्व इज रिप्लेस्ड बाय एन इल्यूमिनेशन एंड ए स्पिरिचुअल ब्लिस। सुखम और प्रकाशम जो जिसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है सात्विक मन के अंदर, इट इज रिप्लेस्ड बाय डायरेक्ट वो प्रज्ञा का प्रकाश मन के अंदर उतरता है और साथ ही एक भागवत आनंद का उसको अनुभव होता है। Identical with the depths and infinite existence of the soul and instinct with the direct and authentic knowledge that springs straight from the veiled glories of the secret omniscience। वो एक ऐसा स्वतः स्फूर्त ज्ञान है जो फिर अंदर में जागने लगता है। और अगर आप पूछोगे तो कि ये कौन से स्क्रिप्चर में लिखा है, तो आप केवल इतना कह सकते हो कि हृदय में जो भगवान का ओरिजिनल स्क्रिप्चर है उस ग्रंथ में लिखा है। तो ये सारा रूपांतरण तीनों गुणों का, उनका मोड ऑफ एक्शन, फर्स्ट स्टेप डिटैचमेंट विटनेस बनना, तीसरा दूसरा स्टेप अनुमंता बनना, पहले उसको स्टडी करना साक्षी भाव लेके, फिर उसका अनुमंता बनना, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका स्वामी बनना, ईश्वर भाव, क्योंकि अब आप उसके मास्टर हो गया। फिर भगवान की शक्ति धीरे धीरे इन गुणों को रूपांतरित करती है और फिर एक नया पात्र गढ़ा जाता है जो भगवान की ही कर्म के लिए, भगवान की ही सेवा के लिए उपयुक्त है, बाकी सब चीज के लिए वो अनुपयुक्त हो जाता है। जय माँ।